أنت أحرم. صلي على محمد كما أنت أحرم وقلنا ما أنت أحرم إنك أنت أحرم التقوى وعلى المغفر. أي وقت أن دوستو زندگی کا نظام چل رہا ہے, اس کی کوئی انتہا ہے؟ آخر ہر ابتدا کی انتہا ہوتی ہے. اللہ ابتدا سے پاک ہے, اللہ انتہا سے پاک ہے, لیکن بندے کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے. بندہ ابتدا اگر ہے اس کی تو وہ اس کی انتہا ہے, اور انتہا بھی ایسی ہے جس میں مسلسل بے نام ہو جانا ہے. ایسا بے نام ہونا کہ بے نام ہی نہ رہے. اللہ پاک اللہ شان ہو ان چیزوں سے پاک ہے, اللہ ان چیزوں سے پاک ہے. افسوس یہ ہے کہ جب ہماری زندگی کی انتہا ہے, یہ بات طے ہو گئی, بنی ہوئی چیز ان قریب ٹوٹنے والی ہے, بنی ہوئی چیز ان قریب ٹوٹنے والی. ابھی جانے ان تک بھرا تھا کب دست صاحب کی چھلک پڑا, رہی دل کے دل میں حسرتیں جو قضا نے آپ کے مٹا دیا. میری بے کسی پہ احرام گزر, نہ تو چین اپنا خراب کر. تجھے کیا خبر کہ میں کون ہوں, تہ خاک کس نے سلا. انتہا ایسی ہے, انتہا ایسی ہے کہ خبر نہیں کہ جوانی کا عروج بھی ہوگا یا پھر کسی جوانی میں ہر پتہ ہی نہیں ہے پہلی باڈی. اور ابھی جان ان پر بھرا ہی نہ تھا, ساقی کے ہاتھ سے چھلک پڑا اور جام بھی ٹوٹ گیا, اور اس کے اندر جو بھی ہے سب کچھ ٹوٹ گیا. یہ خبر نہیں ہے. تو اس لیے اس زندگی کی اگر ابتدا ہے تو انتہا کی خبر نہیں. دیکھو وہ کہتے ہیں کچھ پچھتاوے زندگی میں ایسے ہوتے ہیں, کچھ پچھتاوے زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہے. گھر سے روٹی کھا کے نہ گیا, آگے تو انہوں نے روٹی نہ پوچھی, ایک دن کا پچھتاوا رہا, بھوکا رہ گیا. اور لوگوں نے سردیوں کے لیے کمبل گرم کا اور چیزوں کا انتظام کیا, یہ غفلت میں رہا اور لوگ کمبل لے کے سوئے اور یہ سردی میں ٹٹر رہا ہے. یہ موسم کا پچھتاوا رہا, چھ مہینوں کا پچھتاوا رہا. اور لوگوں نے گندم بو دی, اس نے غفلت کی, وہ گندم کاٹ رہے ہیں, یہ پریشان ہے. اور ایک پچھتاوا وہ ہے جو پوری زندگی کا پچھتاوا ہے. ایک شخص اپنے ایمان اعمال کی زندگی کی کوشش آخرت کی تیاری کرتا رہا اور اس نے نہ کی, یہ ساری زندگی کا پچھتاوا ہے, یہ ساری زندگی کا پچھتاوا ہے. بس میرے محترم دوستو, اس پچھتاوے سے بچنا ہے, اس پچھتاوے سے بچنا ہے. اور جو آخرت کی تیاری کرتا ہے, اور جو موت کی تیاری کرتا ہے, اور جو قبر کی تیاری میں لگ جاتا ہے, اللہ جل شانہ اس کی زندگی کو عافیت سے بھر دیتا ہے. اب عافیت کیا ہوتی ہے؟ جو قبر کی تیاری میں لگ جاتا ہے, اور جو اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے, یاد جو اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے, اللہ اس کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے. ہر قدم پہ یہ ہے کہ میرا رب اس سے راضی ہے یا ناراض ہے, ہر قدم پہ. اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق ہے حقیقی, وہ حقیقی عشق ہی ہے کہ ہر قدم پہ اس کے دل میں ایک خیال ہو کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہیں یا ناراض ہیں. عشق حقیقی کی حقیقت ہی. دیکھو لفظ عشق جو ہے نا, عشق اس کا نام تو یہ نہیں ہے کہ اس کی رات لگائی جائے, دیواروں پہ لکھا جائے, کاغذوں پہ لکھا جائے, نہیں میرے دوست. جو دل میں لکھنے والی چیز ہے اور دل سے نکلنے والی چیز ہے, عشق کا تعلق اس چیز سے. جس چیز سے عشق ہوتا ہے نا, اس کی ہر ادا پہ فخر ہوتا ہے, ندامت نہیں ہوتی, یاد رکھنا. جس چیز سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر ادا پہ فخر ہوتا ہے, ندامت نہیں ہوتی.
نیاپا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر عشق ہے تو پھر آپ کی ہر ادا ایک فخر ہے.
ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ہم امریکہ میں جا رہے تھے کسی کام کو,
ایک شخص کو دیکھا مسلمان جیسی شکل, مسلمان جیسا لباس, سنت کا مکمل لباس, سر سے لے کر پاؤں تک اس کا چہرہ, اس کا جسم, اس کے لباس, ہر چیز. تو کہنے لگے میں نے ان سے پوچھا یہ کون شخص ہے,
لگتا تو ایسے ہے کہ کسی مسجد کا امام صاحب ہے یا مدرسے کا طالب علم ہے یا اس طرح ہے.
کہنے لگے میں تم بتاؤں نا, اس کا تعارف تم ہل جاؤ گے. یہ امریکہ کا سب سے بڑا سائنسدان ہے, ایٹم بم بنانے والا.
امریکہ کا یہ قومی ورثہ ہے, سرمایہ ہے.
ہم نے کہا ہمیں ملوا رہے, آپ ملواتے ہیں.
ان سے سلام کیا, مسافر کیا.
سلام کرنے کے بعد ان صاحب نے, یہ پاکستان کے تھے, جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا, ان صاحب جو اس سے ملے, اس سے پوچھا کہ تجھے جہاں جاتا ہے وہاں سارے کے سارے کافر ہیں, اور ان کا کافر جیسا انداز, لباس, اٹھنا بیٹھنا, تو اس میں کچھ شرم محسوس نہیں ہوتی, کچھ حجاب سی محسوس نہیں ہوتی, کچھ گجر سی؟
اب اس کا جواب
آپ ذرا قریب آئے
اور آپ اس جواب سے حیران.
کہنے لگے یہودی کو اپنی یہودیت پہ فخر ہے, عیسائی کو اپنی عیسائیت پہ فخر ہے, اور میں محمدی ہوں, مجھے اپنی محمدیت پہ فخر ہے. محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کافر اپنے روح پہ فخر کرتا ہے, کافر اپنے روح پہ فخر کرتا ہے. مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پہ, ان کی شکل و صورت پہ مجھے فخر ہے. سبری کو صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ تھا کہ نا, آپ کی شباہت, آپ کی شکل مبارک, آپ کا جسم, آپ کا چہرہ, آپ کا انداز کیسے تھا, اس میں ندامت نہ فخر, اس میں ڈرنا کیسے. کہنے لگے جی کوئی اذان کا وقت ہو گیا ہے تو آپ ذرا اذان دے دیں. جن کے کہنے لگا مجھے شرم آتی ہے, وہ صاف بھی تھے, کہنے لگے جی کسی بے شرم کو بلا لیں, وہ آپ کے آزاد دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پہ ایسا ہی خوشی ہو, ایسی خوشی ہو, اور اندر ایسا نکھار ہو, اور اندر ایسا سکون ہو کہ آج مجھ سے سرور کو نئے سسلم کی یہ ادا ہوئی ہوگی اللہ تعالیٰ شکر ہے. میں اس کا بھی کہا یہ ہے اس کے رسول, اگر ہر سینے میں مرے گا جہاں ہوگا مدینے میں, یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عشق رسول. اور کہنے لگا میں عاشق رسول ہوں, تو کہنے والے نے کہا لگتا یہ ہے کہ تو عاشق رسول تو ہے لیکن تجھے اپنے جسم پہ کملی والے کا عشق سجانا جو ہے وہ آر محسوس ہوتی ہے, اپنے جسم پہ آقا کا عشق سجانے سے تجھے آر محسوس ہوتا ہے. تو عاشق نہیں ہے تو دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اپنی زندگی کو سرور کو علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھالتے چلے جائیں, ڈھالتے چلے جائیں, یہ عشق ہے. میں ایک دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں, آج اس بات کو پھر دوہرائے دیتا ہوں. میں سنی ہوں, سنی سنت سے ہے, سن ہونے سے نہیں ہے, سن ہو گیا نا, یہ بندہ سن ہو جاتا ہے, ہاتھ لگاؤ, دھکا دو, پتہ ہی نہیں ہوتا, کاٹ ڈالو, پتہ ہی نہیں. ارے سنت, آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ مر مٹنے والا, والجماعت اور صحابہ کرام کی جماعت, اہل بیت کی جماعت کی اتباع کرنے والا, یہ ہے اہل سنت والجماعت. یہ شمعِ قرآن سے سنت کی ایک ایک سنت آپ کی ایک ایک ادا اس پہ زندگی کے زندگی اسی پہ چل جائے اور ملاوٹ میں آ جائے اور جیوں میں آ جائے اور طبیعتوں میں آ جائے. بس یہ عاشق رسول. اگر یہ اپنے آپ کو عاشق رسول نہ بھی کہلوائے اللہ کی قسم اسی کو فرشتے عاشق رسول کہیں
گے.
اس کو فرشتے کہیں گے یہ عاشق رسول. ہاں اور خود میرا رب کہے گا یہ میرے حبیب کا میرے دوست کا عاشق ہے. عاشق عشق کے تقاضوں کا تعلق عملی زندگی سے ہے. عشق کا تقاضا عمل مانتا ہے بولنے مانتا. یہ جو لیلا مجنو کا قصہ سنتے ہیں یہ حقیقت یہ تابعین کے دور میں یہ قصہ تھا. حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بعد رضوان اللہ اجمعین ان حضرات کے دور میں یہ تھا. اس کا اصل نام بعض روایات میں کچھ آتا ہے بعد میں آتا ہے اس کا نام کیس تھا. کیس کیس کہتے ہیں عقل مند کو. اور اس کا نام پڑ گیا مجنون دیوانہ پاگل پاگل دیوانہ. اس کو ایک عشق نے دیوانہ کر دیا تھا پاگل پاگل کر دیا دیوانہ کر دیا. اس کا حالانکہ اصل نام کیا تھا؟ کیس تھا. کیس اس کو دیوانہ کر دیا. ایک دفعہ اس نے دیکھا لیلا. اچھا لیلا کسے کہتے ہیں؟ لیل کہتے ہیں عربی میں رات کو اور لیلا کہتے ہیں اندھیری رات کالی اتنی تھی جیسے اندھیری رات نیند نہ جانے ٹوٹی کھاٹ پیاس نہ جانے دھوبی کھاٹ بھوک نہ جانے جھوٹا بھات عشق نہ جانے ذات عشق نہ جانے. اب پاگل ہو گیا دیوانہ ہو گیا کبوتر آ رہا تھا ایک دفعہ اس طرف سے اس کو دیکھ کے کہنے لگا عربی کے اشعار پڑے کہنے لگا اللہ پاک تجھے سفید باتوں کا پانی پلائے. لگتا یہ ہے کہ کنویں لیلا لیلا کی گلی سے آ رہا ہے کچھ اس کا ہاتھ بھی تو سنا دے. ایک دفعہ کسی نے دیکھا کتے کے پاؤں چوم رہا دیوانہ پاگل ہو گیا کیا ہے کہہ رہے لالا کی گلیوں سے پھر کیا ہے شاید اس کے پاؤں کی مٹی اس کے پاؤں کو لگ گئی ہوگی. یہ دیوانی ہے. یہ مثال ان لوگوں کے لیے ہے جو عشق حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی دلیل دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک جھوٹے عاشق نے مر مٹنے والی چیز پہ جن کا نشانی نہ رہا ان کی قبروں کا پتہ نہیں ہے نہ کوئی سکندر نہ رہی قبر دارا میٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا کر یہ آسمان کیسے کیسے نہ گنہے نہ گنچے نہ بوٹے نہ پتے ہوئے باغ نظرے خزاں کیسے کیسے ہر ایک دل پہ داغ ناکامیوں کے نشان دے گیا پہ نشان کیسے کیسے ان کا نشان ہی نہیں ہے کہ ان کی کہانیاں میں سنا رہا ہوں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان قیامت تک رہے گا. جب تک رب ہے اس وقت تک اس کا حبیب ہے. ارے ایسے نہ پٹنے والے بے نشان شخص کا جس کا نشان بے نشان ہے اس کے لیے تو لوگوں نے اجماع کر دیا اور جس کی سیرت صورت جلوہ نقشہ اور ہدایت قیامت تک رہے گی اس کے لیے ہم نے کیا کیا. اور سفر کو نئے سلم کے عشق کے لیے ہم نے اپنی زندگی کو کتنا کھپایا اور کتنا پریشان ہوئے اور کتنا بے چین ہوئے. میرے پاس یہ جھوٹے عشق والے بڑے آتے ہیں ٹیلی فون بھی آتے ہیں خط بھی آتے ہیں ملتے بھی ہیں. سچی بات یہ ہے کبھی دل سے آہ نکلتی ہے کہ الہی مجھے بھی ایسا عشق عطا فرما اپنے حبیب سرور کو نئے ایسا مجھ کچھ عشق عطا اور نظامت ہوتی ہے شرم آتی ہے بات کا اپنے اوپر کہ تو بتا تو نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا عشق کیا ہے کس نے یہ کر لیا ہے. میں آپ کو کارنامے سنانے بیٹھوں نا تو میرے خیال میں एक छोटी सी किताब को क्या बड़ी किताब बन जाए। जब मेरे पास किसी अफगानी आते हैं साहब, शायद वो दोस्त को लेके आते हैं कि किस रिश्ते ने हमारी मदद कर देगा, तो मैं एक बात कहता हूँ, रिश्ते आसमान से बनते हैं, आसमान माफ कर आप पकड़ लो। रिश्ते कहाँ से बनते हैं? ऊपर से नीचे से बनते ही नहीं है। तेरी मेरी कोशिश से क्या होगा? कुछ होगा करना तो कर ले। वो पैसे आसमान से होते हैं, जमीन से होते ही नहीं। लेकिन शर्म क्यों आती है? ये आशिक और इसने इश्क की इतनी इंतहा कर दी, अपनी इज्जतों को बेच देते हैं। ये भी ये मेरे पास पूछा था, चश्मे भी इज्जतों को बेच देते हैं एक इश्क के कदर। जैसा मुझसे कहने लगे, अब तो शहर भर के सारे पीसीओं का मैं मकरूज हो गया। एक शहर से दूसरे बड़े शहर काम करनी पड़ती है, पर काम जब करने बैठता पता नहीं चलता, यूनिट गिर रहे होते हैं, मुझे पता नहीं होश आवाज का। और उस वक्त पता चलता है जब उसका कार्ड खत्म हो जाता है और वो कहते हैं पैसे दे दे, तो पैसे नहीं होते। और कहते हैं यू सच कह के मैं उससे जान छुड़वाता हूँ, वो मेरे पीछे मैं उसके आगे, और पीछे अब तो किसी पीछे अब तो भी वजीफा बता दे। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक खातून आई, कहने लगी कि मेरा खावन जो है वो दूसरी शादी कर रहा है। तो इमाम साहब ने फरमाया, कर सकता है, मर्द को अख्तियार है, अगर अल्लाह पाक ने असबाब आसानी से मयस्सर फरमाए हैं। कहने लगे नहीं, बात जो करनी आई थी वो ये है कि वो जिससे शादी कर रहा है उसका हुस्न जवाब मुझसे कभी कम से कम तक है। अगर शरीयत मुझको इजाजत देती मैं अपना नकाब उठाती, आप मेरा हुस्न जवाब देखते आप फरिश्ता हो जाते, और फिर देखे तो सही मुझ जैसे हसीन को छोड़ के उसमें क्यों मर रहा है। इमाम साहब कहते हैं उसने जब बात की ना, मैं एकदम घूम गया, एकदम अंदर से आए थे, माँ अगर रखा बेरब निकल करी, मेरे बंदे मुझ करीम को छोड़ के तो कहाँ जा रहा है। मुझसे बड़ा कोई हसीन है जिसने आलम को हुक्म दिया? रब से बड़ा कोई हसीन होगा और उसके अमीर से बड़ा कोई हसीन होगा? अल्लाह अकबर। हम आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, एक रसूल वाले को ऐसे आराम फरमा रहे थे, आपके चेहरे को मैंने देखा अनवर को, और चौदवी का चांद था, फिर मैंने मापना शुरू कर दिया कंपेरिजन। कभी मैं चौदवी के चांद को देखी, कभी सरवरे कौनैसलम के चेहरे अथर मुबारक को देखती, फिर कहने लगी कसम उठा के चौदवी का चांद आपके हुस्न पे मांग पड़ गया, चौदवी के चांद में हुस्न था ही नहीं जो हुस्न आता सरवरे कौनैसलम के चेहरे। हाय हाय, कहने लगी अगर मैं नकाब उठा दूं ना, आप मेरे हुस्न जमाल को देख ले, ऐसी हसीन जमाल को छोड़ के उस पे आकर फरिश्ता कैसे हो गया? इसको रोक है दूसरी शादी करने से। तो कहने लगी उसकी बात को मैंने सुन ली, लेकिन मेरे अपने अंदर कैसे पैदा हुई कि तू बता तू अपने रब से कितनी मोहब्बत करता है और कितना इश्क करता है? मेरा अल्लाह यह कहता है कि मेरे इश्क मेरी मेरे हुस्न जमाल को तो देख, मेरे बंदे मेरे हुस्न जमाल को देख, मैं कितना हसीन हूँ और रब कितना हसीन है, जिसने सारे आलम को हुस्न जमाल से भर दिया। और उसका अभी सरवर कौनैन सल्लम उसका हुस्न जमाल कितना है? तो मुझे इन बातों का एहसास होता है कि वो जो नक्शे रियाद करने बैठता है, हाय हाय, मैं बैठा हुआ था, एक किट बता रहा है उसपे, उसका नाम उसकी माँ का नाम लिखा हुआ था, किट रखा है ऐसे टेबल पे, ऊपर पंखा चल रहा था, वो नीचे गिरी ना तो एकदम ऐसे दोनों हाथों से उठाया उसने, पता नहीं मैं किस चीज की मिसाल दूं। मेरे ख्याल में कोई अगर माँ हो और जिसका 20 साल के बाद बेटा हुआ हो और उसका बेटा नीचे गिर जाए, तो मेरे ख्याल में जिस अंदाज से वो उसको उठाएगी ना फरिश्तेगी और पागल हो गए, हाय मेरे लाल क्या हुआ, शायद इससे भी कहीं ज्यादा उसने ताकत को उठाया मुझे यूं। और मेरे ख्याल में अगर वो मेरे पास किसी काम के लिए आया बैठा, मेरे ग्रामा पकड़ लेता कि तूने ये कागज नीचे फेंका क्यों? उसी वक्त अपने ऊपर तरस आने लगा और शर्म के अल्लाह से और उसके अभी सरवर कौनैन सल्लम से हमारी मोहब्बत क्या है, हम कितनी मोहब्बत करते हैं इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इसमें अल्लाह की कितनी मोहब्बत करते हैं और उसका कितना आदर करते हैं, उसका कितना एहतराम करते हैं। अपनी थाम के चले जाए और अपने आप से सवाल करें, खुद सवाल करें, वरना कब्र में फरिश्ते खूब सवाल करें। अपने आप को खुद सवाल करें कि तेरी जिंदगी कितनी ढल रही है सरवरे कौनैन सल्लम के इश्क में और आपकी मोहब्बत में और आपके खिताब में और आपकी उस्वा में और आपकी सूरत में और आपकी सीरत में और आपके नक्शे में और आपके जलवे में और आपकी अदाओं में। इसको सवाल करें, अपने आप से सवाल करें और किसी से क्या करें, अपने आप से सवाल करें। ये जिंदगी कैसा है, ये जिंदगी की हकीकत है, सरवरे कौनैन सल्लम का ये इश्क है। हाँ, अमेरिका के संतान ने अजीब सवाल जवाब दिया था ना, इन सबको अपनी अदाओं पे फखर है, मैं मोहम्मद ही हूँ और मुझे अपनी मोहम्मदियत पे फखर है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अजीब जवाब है। पाकिस्तान में एक नौ मुस्लिम खातून आ रही थी, नौ मुस्लिम खातून पाकिस्तान में आ रही थी, तो हमारे यहाँ तो एयरपोर्ट पे ना जो चेकिंग होती है औरतों की औरतें करती हैं, अंदर जाने के लिए और खवातीन को जरा मर्दों को देखा जाता है एयरपोर्ट में। तो वो कोई ऐसा एयरपोर्ट था कि वहां मर्द को मर्द ही औरतों की तलाशी जैसे कहते हैं, तो औरत को हिजाब में थी, तो मर्द को करीब कहने लगी तो मुझे हाथ नहीं लगा सकता। और वो यूरोप की कोई मशहूर खातून थी गाने बजाने के शोबे की, तो जब उसने कहा ना कि क्यों क्या हुआ, उसने मुसलमान और मुसलमान औरत को अल्लाह पाक ने ऐसा मकाम और तकद्दस दिया है, ऐसी इज्जत और ऐसी गुर्बत दी है, इसको गैर हाथ नहीं लगा सकता। उसने तो बहुत बात नहीं कही कि तो पैर कैसी थी, अब ये हो गई, अगर एक बात जो कही तो ये कही कि हमारे पास और मुसलमान खवातीन भी तो आती हैं, तो कोई और मुसलमान है कि औरों की मुसलमान है, कोई मुनफरद मुस्लिम है, तेरा इस्लाम और है, उनका इस्लाम और है। उसने बड़ा अजीब जवाब दिया। यकीन जानिए उस औरत का जवाब अगर हमारे दिलों के अंदर आ जाए, और खासकर मेरी बहनें सुन रही हैं, अगर उनके दिल के अंदर ये बात बैठ जाए ना, तो ये बात की राबिया बसरिया बन सकती हैं। बस इस एक जवाब जो मैं अर्ज करने लगा, सिर्फ एक जवाब, वो कहने लगी वो औरत, मैंने मुसलमानों का इस्लाम कबूल नहीं किया, मैंने मुसलमानों का इस्लाम कबूल नहीं किया, मैंने तो फातिमा बिनते मोहम्मद का इस्लाम कबूल किया, मैंने तो फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम कबूल किया है। मेरे सामने जो आइडियल है वो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी है और उनकी इज्जत और उनकी हुर्मत और उनका हया और उनका ईमान है। वो फातिमा जो फरमा रही है मुझे दिन के अंदर अगर भी मैं हिसाब मेरा हो जाए तो फिर भी रात को दफन करना कि मेरे जिस्म को दफन करते हुए किसी की नजर ना पड़े। हाँ, मेरा आइडियल जो है और मेरे लिए जो निशाने मंजिल निशाने राह है वो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी है। मैंने मुसलमानों का इस्लाम कबूल नहीं किया, मैंने फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम कबूल किया। ये इश्क है, ये इश्क है, ये इश्क, इस इश्क को अपनी जिंदगी में लाना है, इस इश्क को अपनी जिंदगी में बसाना है, अपने सर का ताज। इस इश्क को मालना पड़े अपनी जिंदगी का, मेरी बहनी जितनी बैठी है वो भी करें, आप खुद रात भी करें, हम अपनी जिंदगी का मुआवजा करें कि हमारी जिंदगी के बोल कितने हैं इश्क में और उन जिंदगियों के अमल कितने हैं इश्क में। जब तक मेरे मौसम दोस्तों इस चीज को लेकर नहीं चलेंगे, अल्लाह की नुसरत कोई नहीं होगी। कब्र एक हकीकत है, मौत एक हकीकत है, आफत एक हकीकत है और उसमें जाना है, और उसमें जाना है।
वहां तो म्यार, वहां जो म्यार है ना, वहां जो म्यार है वो बोल नहीं है, वो अमल है, अमल वो है जो खाने से बना हुआ। वहां का म्यार वो, वहां का म्यार वो जो मर मिटने वाले हैं ना, और फिर अपनी तबीयतों और अपने मिजाजों को और अपनी जरूरतों को कुर्बान करके चलते हैं। ये सौदाएं पूरे जाना, ये कदम कदम बनाए, जिन्हें जिंदगी है प्यारी वो यहीं से लौट जाए, वो तो फिर इश्क में आके ना बस नए आशिकों को जो भी आशिकों की मिसालें दी हैं, असल इश्क तो अल्लाह की मोहब्बत का है, जिसको कुरान ने फरमाया अल्लज़ीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। असल इश्क तो ये है, ये कुरान पाक की आयत से मैं इश्क का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुहद्दिसीन ने लिखा है, किसी ने सवाल किया कि कुरान में इश्क कहाँ है, पर मैं ये है कुरान का इश्क, असल इश्क हकीकत के लिए अल्लाह जल्ला शानहु के लिए, उसके हबीब सरवर कौनैन सल्लम के लिए, हमारी जिंदगियां, हमारी जाने, हमारा माल, हमारे बच्चे, हमारे जिस्म का रुआ रुआ हाजिर है। और यहाँ थोड़ा सा मिजाज के खिलाफ बात हो जाए, वही टूट जाते हैं, कहाँ इश्क गया और कहाँ मोहब्बत गई, कहाँ मिजाज गया, वो तो बस सारे सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। ढालते चले जाए अपनी जिंदगी, और इसमें किसी किस्म का कोई हिजाब और शर्म ना हो, झिझक ना हो, और इसके करने पे फखर हो, और जो नहीं कर रहे उन पे हकारत ना हो। हाँ, कहीं पर इससे भी नीचे गिर जाएंगे, बता जो नहीं कर रहे उनके बारे में क्या ना हो। हाँ, अरे मैं तो आपसे अक्सर अर्ज किया करता हूँ, काफिर के बारे में हकारत ना हो। ये अमेरिका वाले, ये रूस वाले, ये इंडिया वाले, ये चीन वाले, ये जापान वाले, ये पता नहीं दुनिया वाले सारे हैं, क्या पता मेरा रब आखिरी वक्त में उसको कलमा दे दे और मुझसे पहले के हटने चला जाए। बकौल कल्ला वाले के, ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने ना कभी रोजा रखा होगा, ना कभी नमाज पढ़ी होगी, क्यों आवाज नहीं देगी, न कभी रोजा रखा होगा, न कभी नमाज पढ़ी होगी, ऐसे लोग भी होंगे, न रोजा रखा न फरमाया के बड़े बड़े रोजेदारों से और बड़े बड़े नमाजियों से पहले जन्नत में जाएंगे। वो लोग होंगे जिनको अल्लाह जल्ला शानहु कलमा अता फरमाएगा हालत कुफ्र में, और वो हालत कुफ्र में अभी एक नमाज का वक्त ही नहीं आया होगा, उससे पहले मौत का होगी, नमाज फजर पढ़ी नहीं मसलन, और नमाज फजर के बाद अल्लाह पाक ने ईमान की दौलत अता फरमाई, नमाज ज़ोहर से पहले अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, न एक नमाज पढ़ सके, न एक रोजा रख सके, न दीन के शियार पे अमल पूरा कर सके, अल्लाह पाक ने उन्हें बुला लिया। इसलिए दरख्वास्त कर रहा हूँ हमारे दिल में तो उन लोगों के बारे में भी खैर खाई का जज्बा। अक्सर मैं आज क्या करता हूँ, मेरे मुशाहदे में तो ये बात आई है मुसलसल, अगर हुकूमत पाकिस्तान वीजे की और ये बार्डरों की पाबंदियां खत्म कर देना, जो डिफेंस के 3 करोड़ का बंगला आपको 10,000 में मिल जाएगा, 10 लाख में तो कहीं गया ही नहीं ना, क्यों, लॉ खाली हो जाएगा, सारा यूरोप चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा, हर बंदा बाहर जाने के लिए तैयार है। मेरा मुशाहदा यह कहता है कि मेरे पास टेलीफोन आते हैं वजीफों के लिए, दुआओं के लिए, और उस यूरोप और अमेरिका को गालियां देने के लिए भी सारे तैयार है। ये कहो कि तुलसी गंगा बह रही है, मैं तो कहना देता हूँ, यदि उनकी अंबेसी में जाके लाठी चार्ज हो रही होती है, लाइन बनाओ, टाइम खत्म हो गया, जिसका है इस्लाम के, इस्लाम की संदाज की नफी करता है मेरे दोस्त, इस्लाम की संदाज की नफी करता है। इस्लाम तो अमन का मतलब है, इस्लाम तो दावत का मतलब है, अपनी जिंदगी को मेरे दोस्तों कटते चले जाए और ढालते चले जाए, काफिरों को तबलीग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, काफिर हमारी जिंदगी को देख के मुसलमान हो जाएगा। क्या इश्क ऐसी चीज है, सरवरे कौनैन सल्लम के साथ इश्क का ताल्लुक ऐसी चीज है कि उसको अपनी जिंदगी में ढाला जाए, क्यों अल्लाह वालो। हाँ, आज के बाद लाते इश्क का बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना, बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना। ये इश्क नाम जब कोई कवाली नहीं है, वह इसको गाए और झूमे और नाचे
और उसके बाद छुट्टी। अरे नहीं, इसका ताल्लुक सरवरे कौनैन सल्लम की मोहब्बत से है, आपका कमली वाले के इश्क से है, और आपके नाम से है, और आपकी सूरत से है, आपकी सीरत से है, आपकी अदाओं से है, अपने आप को ढालने से है, अपने आप को ढालने से है। ये फैसला करें, ये अंदर ही अंदर फैसला करें, और जिंदगी को इस पे ढालना है, और जिंदगी इस पे लाना है, और किस वक्त लाना है, मरने से पहले, मरने से पहले पर इस पे लाना है, और सिर्फ मौत का पता ही नहीं, मौत की खबर ही नहीं, कब मौत आएगी ये तो खबर हो ना, कि दो तीन साल पहले पहले अपनी मैं रिकवरी कर लूंगा, अपनी ट्यूनिंग सर्विस कर लूंगा, उसकी खबर नहीं कब मौत आएगी, अचानक छीन लिए जाएंगे। और आजकल तो वैसे ही उम्र थोड़ी हो गई है, छोटी हो गई, छोटी नहीं हो गई उम्र, कोई मिलेगा 70 वाला, 80 वाला, 90 वाला, वो भी आहिस्ते आहिस्ते कम होते जा रहे हैं। इस उम्र की उम्र वैसे भी छोटी है, दोस्तों अगर कब्र में सरवरे कौनैन सल्लम का सामना हो गया, होगा, याद रखना होगा, और मैं सरवरे कौनैन सल्लम का चेहरा आकर आपका चेहरा अनवर दिखाया जाएगा, इस शख्स को दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा, बता इस शख्स के बारे में तेरा क्या ख्याल है, ये कौन है, हाँ ये कौन है। उस वक्त मेरे दोस्तों फिर एक चीज चढ़ेगी जो दिल में होगी, जुबान के बोल खत्म हो जाएंगे, दिल के बोल शुरू हो जाएंगे, और दिल में जिस चीज की मोहब्बत और इश्क होगा ना, उसी के बारे में फौरन जवाब आएगा। वो दौलत से होगा, वो चीजों से होगा, वो माल से होगा, वो हसन से होगा, वो जवानी से होगा, या फिर आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर इश्क होगा, फिर कहेगा हाँ हाँ इनके बारे में पूछते हो, सारी जिंदगी इन्हीं को राजी करने के लिए और इनके रब को राजी करने के लिए तो मैंने हयाती गुजार दी है, मुझसे पूछते हो ये कौन है, ये कौन है, मुझसे पूछते हो। हजरत राजे बसी रहमतुल्लाह को बारे में फरमाया कि उनको जब दफन किया गया ना, किसी ने ख्वाब में पूछा क्या बना, कहने लगे मुझसे फरिश्ते आए और पूछने लगे तेरा रब कौन है, कहने लगा वाह वाह, चंद हाथ जमीन के नीचे आके उस रब को भूल गई हूँ जिसकी सारी जिंदगी जिसके सामने मैं लड़ाई करती रही हूँ, मुझसे उस रब को पूछते हो तब बताओ तुम्हारा रब कौन है। ये इश्क है मेरे दोस्तों, इससे अपने आप को ढालना है, डोरे किसी आपके हाथ में है, अनकरी तना में खींचने वाली है, बेनाम होने वाली है, नामवरी खत्म होने वाली है, बेनिशान बेनिशान होने वाले हैं, सब कुछ खत्म होने वाला है, कर ले अमल खैर, यही नामवरी है, यही नामवरी है, यही नामवरी, कहीं कब्र में निदामत ना हो, पछतावा ना हो, और उस निदामत का कुछ नहीं बनेगा मेरे दोस्त। अरे घर से भूखा गया, किसी ने खाना ना पूछा, वो पछतावा और निदामत एक दिन का है, उसे खाना फिर भी मिल जाएगा, अपनी फसल ना बोली दूसरे फसल काट रहे, वो साल का है मेरे घर में गंदम और दाने ना आए, और पूरी जिंदगी का पछतावा होगा, कोई साथी नहीं बनेगा। पर यहां तक के सरवरे कौनैन सल्लम के पास जब ये जाएगा ना, और हौज़े कौसर से पानी का प्याला और वो जो जन्नत का एक खास मशरूब है, उसके पिए बगैर इसकी प्यास नहीं बुझेगी। और मैं बाद लोगों के बारे में रिवायात में आता है वफ़ो मस कर रहा हूँ, उनको धक्के दे रहे होंगे फरिश्ते, और वो कह रहे होंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो आपकी उम्मत में से हैं, हम तो आपकी उम्मत में से हैं, और फरिश्ते कह रहे होंगे तुम हजूर की उम्मत में से जो हो, लेकिन तुमने हजूर को राजी नहीं किया था। मेरे दोस्तों उसके लिए पहले से तैयारी करें, कुछ हाथों की तैयारी करें, कुछ कब्र की तैयारी करें, कुछ सरवरे कौनैन को राजी करना है इसकी तैयारी करें, सारी जिंदगी ऐसी गफलतों में उतर जाएगी, सुबह हुई शाम हुई और जिंदगी तमाम हुई। और आखिरी बात ये चंद कह रहा हूँ, जरा गौर से सुनना, देखो वक्त उम्र और माल, वक्त उम्र और माल, ये बेबरकती का जमाना है, बरकतें नहीं है, वक्त में बरकत नहीं है, उम्र में बरकत नहीं है, नहीं है। दिन कितने गुजर गए, 6007 गुजर गया, 6006 गुजर गया, 6005 गुजर गया, 4 गुजर गया, सभी गुजर गई और सुबह होती है शाम पल भर में हो जाती है और रात को भी ऐसी कमर ही सीधी होती है सुबह हो जाती है, बनती है। अलामत कयामत में हदीस में ये हदीस है जिसका मैं मतलब आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। कयामत में साल ऐसे होंगे जैसे महीने, जैसे महीना गुजर गया साल ऐसे गुजर जाएगा और महीना ऐसे होगा जैसे हफ्ता और हफ्ता ऐसे होगा जैसे दिन और दिन ऐसे होगा जैसे चिंगारी शरारा। याद कर रहे ना, कोयले से चिंगारी यूं ऊपर निकलती है और एक पल भर में ऊपर जाके बुझ जाती है और पता ही नहीं चलता वो चिंगारी कहां गई। देखा ना कभी आपने, दिन ऐसे गुजर गया और ऐसे ही गुजर रहा है, दिन ऐसे ही गुजर रहा है। भाई वो काम कर ले जो आखिरत में काम आए तो क्या ख्याल है, कब्र में वो काम कर ले, आखिरत के लिए वो काम कर ले। मैं एक चीज पढ़ रहा था, दिल में आया कि आपको भी सुना दूं, तो बरकत वाली चीज है। हारून कहते हैं मैंने मोहम्मद बिन वास्ती को ख्वाब में देखा और पूछा अल्लाह जल्ल शानहू ने आपके साथ क्या मामला किया। उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह जल्ल शानहू ने मेरी बख्शिश कर दी। मैंने पूछा किस अमल की वजह से आपकी बख्शिश हुई। उन्होंने कहा अबू उमर बसरी रहमतुल्लाह की एक मजलिस जुमा के दिन असर के बाद मुनक्किद हुई, मैं भी उसमें शरीक था। एक अल्लाह वाली महफिल किसी अल्लाह वाले की मुनक्किद हुई और मैं भी उसमें शरीक था। महफिल के बाद उस मजलिस के बाद उन्होंने दुआ की और मैंने आमीन कह दी। उन्होंने दुआ की और मैंने आमीन कह दी, बस उसकी वजह से अल्लाह ने मेरी बख्शिश कर दी। क्यों फरमाया बाद औकात बाद मजालिस में ऐसे लोग होते हैं जो अल्लाह के खासाने खास होते हैं और उनकी बोल को अल्लाह रद्द नहीं करता और उनकी आमीन को अल्लाह पाक लौटाता नहीं। फरमाया उसमें एक ऐसा शख्स भी बैठा होता है जिसका अल्लाह के दशानों से मोहब्बत का कोई ताल्लुक नहीं होता लेकिन उसकी आमीन की वजह से अल्लाह उसकी आमीन को भी कबूल करवा रहे। एक बुजुर्ग को एक आदमी ने आके बताया कि हजरत एक शख्स ऐसा है जो ये कहता है कि मैं रब को नहीं मानता और मुझे अल्लाह से मनवा के दिखाए, दलील दे मुझे मनाए। हजरत फरमाया चलो उसके पास। जब गए उन्होंने कहा भाई दलील ये है कि आग जलाते हैं तू भी आग में हाथ डाल मैं भी आग में हाथ डाल तो मेरे पास कोई कुरान और हदीस की दलील नहीं है, बस ये दलील है तू भी आग में हाथ डाल मैं भी डालता हूं, जिसका हाथ बच गया वो सच्चा है। उसने कहा ठीक है, उसने कहा ठीक। अब वो पसपेश करने लगा। इन्होंने क्या किया, उसका हाथ पकड़ा, हाथ जलवाई, अपना हाथ और उसका हाथ आग में डाल दिया, दोनों बच गए, दोनों बच गए। अभी ये परेशान वो खुश, उसने कहा देखे। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद अल्लाह से आज क्या इलाज, तेरे नाम की इज्जत तो थी, तेरे नाम की इज्जत थी, तेरे नाम की वजह से मैंने किया था, अल्लाह मुझे रुसवाई से बचा ले, ये क्या हुआ। तो गैब से आवाज आई जिसे सब ने सुना, इसे कहो अपना हाथ अकेला डाल के देखे तो सही जरा, इसका हाथ ऐसे के हाथ में था जिसका हाथ मोहम्मद अरबी सल्लम के हाथ में। मुझे सहन हो गई मंजरे, मुझे सहन हो गई मंजरे कि हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग रख के भी जल गए। इसे कह अकेला हाथ डाल के दिखाए तो सही। अब उससे पूछा तेरा हाथ कैसे बचा, कहने लगा मैं समझ गया था कोई रब है, جب آپ والا اس نے بات کی نا, اب تک سب دلیلوں سے میں نے لوگوں کو حرام دیا تھا اپنی چرب زبانی کی وجہ سے. اس نے آپ سے ایسی بات کہی جس میں لگا تو بھی ہاتھ میں ہاتھ ڈال, میں بھی ہاتھ میں ہاتھ ڈال, تو میں کو پیش کرنے لگا. جب آپ نے ہاتھ اس نے میرا پکڑا نا, میں نے اس وقت عرض کیا کہ الہی تجھ پہ ایمان لایا ہوں, اپنے اپنے نام کی برکت سے مجھے بچا دے اور میں اللہ کے نام کی برکت سے بچاؤں, اور میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ میں آج کے بعد مسلمان ہو گیا ہوں. ایسی محبت پیدا کریں, ایسا تعلق پیدا کریں کہ اللہ پاک ایسا بنا دے ہمیں, ارے ہم خود تو خود لوگوں کو آگ سے نکلوانے کا ذریعہ بن جائے. دوسروں کے ساتھ نسبت یہ بڑا فائدہ دیتی ہے. بعض مجالس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, بعض محافل میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, ہمیں تو یہاں تک سنا, یہاں تک سنا کہ بعض مجالس میں اور بعض اللہ والوں کی محافل میں ایسے بڑے بڑے بزرگ جنات ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی اللہ کی محبت اور ذکر الہی میں گزری, اور وہ بھی بیٹھ کے ساتھ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کس کی وجہ سے اللہ کے ہاں قبولیت ہو جائے, کس کی وجہ سے قبولیت ہو جائے. تو یہ واقعہ بڑا عجیب ہے. میں لگے اللہ پاک, اللہ شاہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. میں ابو عمر بصری کی محفل میں تھا, دس دیا انہوں نے, اس کے بعد دعا کی اور میں نے آمین کہہ دی, اس آمین کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے میری بخشش کر دی. محمد بن مفضل کہتے ہیں میں نے منصور بن عمار رحم اللہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا, پوچھا اللہ جل شانہ نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ پاک جل شانہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا, تو دنیا سے بڑا اختلاف رکھتا تھا, یعنی تو دنیا میں بہت دھسا ہوا تھا, پھر بھی میں نے تجھ کو اس لیے بخش دیا تو لوگوں کی محبت, تو میری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا تھا. اللہ اللہ کیسی عجیب بات ہے, تو دنیا میں رہتا تھا لیکن میں تجھے بخشا. کیوں بخشا؟ کہ تو لوگوں کے دلوں میں میری کیا پیدا کرتا تھا, میری محبت پیدا کرتا تھا. اب تو ایسا کر, کھڑا ہو اور میرے فرشتوں کے درمیان وہ میری محبت بیان کرنا. سبحان, تو کھڑا ہو اور میرے فرشتوں کے درمیان وہ میری محبت اور میری بزرگی بیان کر. اور اس کے بعد کہنے لگے میرے لیے ایک کرسی لائی گئی, عظمت کی کرسی لائی گئی, اللہ کے ہاں عظمت کی کرسی کیا ہوگی, اور لائی گئی اور میں اس کرسی پر بیٹھ گیا اور میں نے اس کرسی پہ بیٹھ کے فرشتوں کے سامنے اللہ کی عظمت کو بیان کیا. کہ اللہ کو اپنا بنا لو, کہ اللہ کو دل میں بسا لو, یہ زندگی ایک مہلت ہے, روٹھے ہوئے رب کو منا دو. الہی دنیا میں کوئی کیا چاہتا ہے, الہی میں تجھ کو تجھ سے مجھے چاہتا ہوں. بس میرے دوستو یہ زندگی ہے, اس زندگی پہ آنا ہے. بڑے استقبال ہوں گے دنیا میں, لوگ اچھا برا کہہ دیں گے دنیا میں, لوگ کبھی کو بتائی بیان کر دیں گے اور دنیا میں تنقید تردید کوئی باتیں سہنی پڑ جائیں گی. کیا بڑے مقاصد کے لیے چھوٹی باتوں کو برداشت نہیں کیا جاتا؟ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ان سیاست والوں کو دیکھ لو, ووٹوں کی خاطر لوگوں کی کتنے تان تشنی بیان کرتے ہیں. میں اس دن ایک صاحب میرے پاس ٹیلی فون کیا کسی اور شہر سے دور کہیں, مجھے کہنے لگے اللہ والا بننا چاہتا ہوں, آپ کے پاس آ کے بیٹھ ہونا چاہتا ہوں اور فلاں فلاں سیاسی جماعت کا اس طرح ہوں. میں نے کہا استعفا دے کے میرے پاس آ جا. کہنے لگے وہ تو بڑی خدمت کر رہا ہوں. میں نے کہا وہ خدمت تو یوں کر رہا ہے کہ تو بتا کیا اس میں غیبت, جھوٹ, دھوکا, فریب اور بھی بہت سی چیزیں نہیں ہیں؟ کہنے لگا ہیں. میں نے کہا ان کے ساتھ خدمت ہو سکتی ہے تو اللہ والا بن سکتا ہے؟ خود سوچ. کہنے لگا نہیں بن سکتا, اللہ والا نہیں بن سکتا. میں بہت ہم دوستو آج کے بعد آپ بیٹھے بیٹھے فیصلہ کریں. کیا فیصلہ کریں گے بتاؤ بھائی؟ آج کے بعد کیا فیصلہ کیا, اللہ والا بننا ہے اور محمدی بننا ہے؟ یا کرنا عشق کا تعلق محمدی بننے سے ہے. ہاں आशिक का जनाजा है, जरा होम से निकले। सच्ची बात, जिसका इश्क मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक होगा ना, मैं एक हदीस का मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, पक्की हदीस है, उसके घर से लेकर कब्र तक फरिश्ते लाइन बना के खड़े होंगे, मरहबा कह रहे होंगे, यही ढूंढते हैं और पहुंच ही दूंगे, और उसके मन से ही फरिश्ते उसको वसूल देंगे जो हमें नजर नहीं आता। जन्नत से कफन लाएंगे सब रंग का जो हमें नजर नहीं आता, वो पहनाएंगे, और उसके बाद उसके जनाजे में शरीक होंगे। और इसकी एक हदीस है, सरवर कौनैसम एक जनाजे में थे, पंजू के बाद चल रहे थे, मफहूम है, पंजू के बाद चल रहे थे, साहब ने अर्ज किया या रसूल सल्लम आप पंजू के बाद, फरमाया कितने फरिश्ते हैं कि पांव सीधा रखने की जगह नहीं है। ये आशिक का जनाजा है, ये मोहम्मदी का जनाजा है। अरे जनाजे हमारे भी निकलेंगे, ऐसा निकल जाए जनाजा, ऐसा निकल जाए, कोई ऐसा काम हो जाए, अपनी जिंदगी की ऐसी तामीर कर ले और सरवरे कौनैसम की मोहब्बत के रंग में अपने आप को ऐसा रंग ले कि ऐसा हो जाए। मतलब दोस्तों अभी तक जो है वो बकौले कल्ला वाले के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में क्या रंगेंगे, अभी तक अपने आप को मुर्शिद के काबिल ही नहीं बनाया, वो मार्फत की राहों के दरवाजे अभी तक अपने लिए खोलने की कोशिश ही नहीं की, अभी तक वो इश्क और मोहब्बत अपने अंदर लाए ही नहीं। मुझे ये बताएं, कभी अम्मा अब्बा के बारे में भी बदगुमानी पैदा होती है, पता नहीं ये माँ है या बाप है, कोई राह चलते दोनों इकट्ठे हो गए ना पैदा हो गया, कोई उधर से आया कोई उधर से आया, कभी सोचा, कभी सोचा? ये इश्क है माँ और बाप से, जब इश्क कामिल होता है फिर शक और शुबा खत्म हो जाता है, फिर बदगुमानियां नहीं रहती, फिर शक भी खत्म हो जाते हैं जब इश्क कामिल होता है, और जब इश्क कामिल नहीं होता ना फिर ये हर वक्त डांडोल रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी कौन सी सोच कभी कौन सा फिक्र कभी कौन सा गम, बस ये ऐसी ही फिर इसकी जिंदगी के दिन रात गुजर जाते हैं। दोस्तों अपनी जिंदगी को अल्लाह के लशान हूं और उसके हबीब सरवर कौनैसम के इश्क में ढाले। मैं अक्सर अर्ज किया करता हूं, मैं आज तक अपनी किसी किताब के बारे में आपसे अर्ज नहीं किया कि वो लें पढ़ें। एक किताब है आदाब मार्फत, आदाब ये जरूर पढ़ें, और एक किताब को 10 दफा पढ़ें। आज मुझे एक साहब कहने लगे, आज मुझे एक साहब आए कहने लगे कि मैं आप मेरे बारे में मुतमईन हैं, तो मेरा जो जवाब था उसके चंद अल्फाज तकरीबन मफहूम ये है कि आप अपने अंदर झांकें कि आपके अंदर इश्क कितना है, मोहब्बत कितनी है। और फिर उनसे मैंने अर्ज किया कि आदाब मार्फत किताब है, इसको लेके पढ़ो और बार बार पढ़ो, और हर दफा ऐसे पढ़ो कि मैं पहली दफा पढ़ रहा हूं, इतना यकीन तवज्जो ध्यान से ये फैसला करें आज के बाद कि हमने मोहम्मदी बनना है। कर लिया। सच्ची बात यह है हमारा जनाजा भी वैसे हो जाए कि फरिश्ते इतने हों। इसी मदन में वो शख्स भी मौजूद है आपकी, उस शख्स की तुर्बत मौजूद है, हजरत शाह अबू साद मदन रोजा शाह अबू साद के सामने टेम्पल रोड पे है बैठे, दस हदीस दे रहे थे, जनाजा गुजरा सामने से, फौरन फरमाने लगे ये जन्नती का जनाजा है। हजरत कैसे? फरमाया मैं अल्लाह ने मुझे दिखाया है, मैं देख रहा हूँ इसमें बेशुमार फरिश्ते हैं, और फरिश्ते जन्नती के जनाजे में आते हैं, जहन्नमी के नहीं आते। मुझे तो उस दिन एक साहब ने बताया कि एक एम्बुलेंस वाला, उसने कहा कि मेरा भी तजर्बा है कि ये मैयत कैसा है, गाड़ी चलते हुए हमें पता चल जाता है कि ये मैयत, एम्बुलेंस में मैयत आना जाना, मरीजों का आना जाना, यही सिलसिला रहता है। एम्बुलेंस वाले ने बताया, अरे गाड़ी चलती नहीं है, फौसले तय नहीं होते, हमें पता चल जाता है कि मैयत जो है बस कुछ और है। मुझे खुद कब्र वाले ने बताया, कब्र खोदने वाले ने, मैंने उससे खुद बातें की,
उन्होंने कहा ये जमीन खुद जगह देती है, वहां जमीन खुद जगह नहीं देती, हमारी कसी हमारी कुदाल हमारा फावड़ा जो है वहां काम ही नहीं करता। और कह रहे कि 8-8 दिन हमारे जिस्म दर्द करता रहता है और हम समझ जाते हैं कि इसकी कब्र बना रहे हैं, लगता यह है कि उसने रब को राजी नहीं किया। बस मरने से पहले पहले अपनी जिंदगी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना के जाना है, यह जिंदगी का असल व्यास है, यह जिंदगी की असल हकीकत है, इस जिंदगी पे चलना है, इस जिंदगी पे आना है। रोटी सूखी खाने, मेरे पास गाड़ी नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, साइकिल नहीं, मैं किसी नंबर वाले वैगन पे 5-6 रुपए का किराया दे के आता हूँ, कोई हर्ज नहीं है। मेरा लिबास शहर निशान नहीं, मेरी ड्यूटी अच्छी नहीं, कोई निदामत की बात नहीं है। याद रखना ये लिबास फाड़ दिए जाते हैं, ये जस्म चीर दिए जाते हैं, और अंदर ईमान मियार है अल्लाह की बारगाह में। हाँ, जिसको अल्लाह ने माल और दौलत दिया और अल्लाह ने नेमतें दी चीजें दी और फिर भी वो अल्लाह वाला है और मोहब्बत ही है, उससे बड़ा खुशकिस्मत कौन है। उसकी ये दुनिया भी जन्नत है, उसकी वो भी जन्नत है। अपनी जिंदगी को मेरे दोस्तों इन चीजों पे ठा दें और दिन रात इस पे मेहनत करें, अपने तन पे मेहनत करें। माल पे मेहनत की मालदार बन गए, दुकान पे मेहनत की दुकानदार बन गए, फैक्ट्री मेहनत की सड़क मेहनत की मिल और फैक्ट्री वाले बन गए, चीजों पे मेहनत की चीजें वाले, जमीन पे मेहनत की जमींदार बन गए। अरे अपने ईमान पे मेहनत नहीं की ईमानदार नहीं बने, ईमान वाले नहीं बने। ईमान पे अपने दिल पे अपने तन पे मेहनत करें, अपने तन पे मेहनत करें कि हमें सरवर कौनैन सिस्टम से कितना इश्क है और हमें अल्लाह के दशानों से कितनी मोहब्बत है। मैं तो आपको बार बार कह रहा हूँ, ये दुनिया के इश्क वाले, मुझे उस दिन एक साहब कहने लगी, खातून बिचारी कोई आई, कहने लगी उन्होंने इनकार कर दिया है, हमने उसको नहीं बताया, पागल हो जाएगा। मैंने कहा वाह ये है इश्क। कहने लगे हमने नहीं बताया, मैंने कहा उसको जाके बता दो, हमने नहीं बताया पागल हो जाएगा, उन्होंने इनकार कर दिया है। ऐसी मोहब्बत अल्लाह से कि अगर ऊपर से इनकार का गुमान भी आए तो कहेगा इलाही मैं कहां जाऊंगा। अल्लाह तू राजी हो जा, तू राजी हो जा। एक बद्दू था, काबा के गिलाफ को पकड़ के रो रहा था और कह रहा था इलाही तू राजी हो जा, ए अल्लाह हो जा, ए अल्लाह हो जा, अच्छा नहीं होता अच्छा अब तो हो जा, अब तो हो जा। ऐसा इश्क हो, ऐसी मोहब्बत हो और सरवरे कौनैन की एक एक अदा पे जान चली जाए, अदा कुर्बान न हो जान कुर्बान हो जाए। अपनी जिंदगी को अमल का नमूना बनाते चले जाए, अपनी जिंदगी को भरते चले जाए रंगों से कमली वाले के। ये है जिंदगी असल, ये है जिंदगी असल। मैं आपसे कोई देवबंदी बरेली का मतलब कर ही नहीं रहा, ना ये मेरा कभी मौजू रहा है ना रहेगा। फिरके कौमें जुबाने रंग मेरा मौजू नहीं है, मिजाज ही नहीं है, तबीयत में आता ही नहीं। अल्लाह जगह जानो ने शुरू से जिन दुवेशों की जूतियां सीधी करवाई हैं, उन दुवेशों की जिंदगी में ये चीजें पाई नहीं है, इसलिए आई नहीं है और कभी इनको लाया ही नहीं, ना आई है ना पाई है ना लाई है, कुछ नहीं है, ये मिजाजों में नहीं है। और आपसे भी अर्ज करूंगा इन सारे के सारे रंगों को और नस्लों को और फिरकों को मिटा के हम तो मोहम्मद ही है, बस हमारी ये पहचान है। इससे बड़ी कोई पहचान हो सकती है? इससे बड़ा कोई रिश्ता हो सकता है? इससे बड़ा कोई मकान हो सकता है? बस ये हमारा मकान, हमारा मकान यही है मेरे दोस्त। और हम ये चाहें कि सारे आलम के सारे इंसान मोहम्मद ही बन जाएं, बस हम आपको ये चाहें, सारे आलम के सारे इंसान, सारी दुनिया के सारे इंसान अल्लाह वाले बन जाएं, अल्लाह वाले बन। अरे याद रखना जो बोल बोले जाते हैं कोई पद ऐसा होता है कि कबूलियत का होता है, कबूल हो जाते हैं। बस बोल ऐसे होते हैं
मैंने अपने हजरत रहमतुल्लाह अलैह को बड़ा था, वो अल्लाह वाले कहते थे, उनके कौन था अल्लाह वाले। और सच्ची बात यह है, बाद उनसे इश्क तो न कर सका, थोड़ी सी मोहब्बत थी मेरी कैसियत इश्क की। और बाद ऐसी मैं अदाएं बनाता था, अदाओं से मुराद यह है कि ऐसे अमूर की कोशिश करता था तो वो मुझे अल्लाह वाले कहते पुकारे। और दिल में आती थी, इलाही ये तेरा बंदा अल्लाह वाला है, ये मुझे अल्लाह वाला कह रहा है, इलाही तू इसके गुणों को कबूल कर तो ले और मुझे अपना अल्लाह वाला बना ही ले, अल्लाह वाला बना ही ले। जो गोल बोले जाते हैं गोलों की अल्लाह की यहाँ बड़ी कीमत है। बात अड़िया, बात पल, बात साते, बात कदम ऐसे होते हैं और बात औकात ऐसे होते हैं कि वो कबूलियत के औकात होते हैं और अल्लाह जल्ला शानहु कबूल फरमा लेते हैं, अल्लाह कबूल कर लेते हैं, अल्लाह वाला बना देते हैं। तो इसलिए अल्लाह वालों ये जिंदगी की एक अल्लाह पाक ने एक मौका दिया है, अपने आप को सरवरे कौनैन सुकून के इश्क में ढालते चले जाओ, आपकी मोहब्बत में अपने आप को रंगते चले जाओ और अपने आप से पूछो बैठ बैठ के, बता तूने जिंदगी की इतनी बहाएं देखी है, अब तक तूने अपने तन के लिए किया, सबके लिए किया, अपने हबीब कमली वाले के लिए तूने किया क्या है। अपने आप से पूछे, आप से ना पूछे कि लोगों के लिए उठी हुई उंगलियां जो है ना इन्हीं ने सारा काम खराब किया है। अरे नहीं, मुझे अपने शेख की अल्लाह वाले की बात याद आए, उनकी फरमाते थे अब तक क्यों क्यों आलम के लिए है, अब क्यों क्यों अपने लिए करो। तूने क्यों ना किया, तू क्यों मोहम्मदी ना बना, तू क्यों अल्लाह वाला ना बना, तूने क्यों मेहनत ना की, अब तक सारे आलम के लिए क्यों क्यों थी, अब अपने लिए क्यों क्यों शुरू कर, बस काम हो जाएगा तो करेंगे ना अल्लाह वाले, करेंगे ना। और अल्लाह वालों इसके अल्लाह से मांगो, इसके अल्लाह जल्ला शानों से मांगो भी सही और इस पे कोशिश भी करें और इस पे मेहनत भी करें और इस पे जान भी मारे और फिर अल्लाह से कहें इलाही तू कर दे, मैं मखलूक, मेरा मांगना मखलूक, तू खालिक है, तू चाहेगा तो हो जाएगा और तू नहीं चाहेगा कभी ना होगा, कभी ना होगा, कभी ना होगा, तेरी चाहत का ना वजूद है। तो क्या कह रहे अल्लाह जल्ला शानों से बैठ के मांगे,
اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد صل على محمد كما انت صليت على ابراهيم صل على محمد كما انت صليت على ابراهيم اصل بنا وانت اصلح فانك انت اصل التقوى واصل المغفرة يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا الله پوری امت کو کامل ہدایت عطا فرما، سارے عالم کو